ईयू प्रतिबंध, मानवीय गरिमा और हुसैन डोगरू मामला, एक न्यायिक विश्लेषण। विस्तारित समकालीन यूरोपीय संघ में लक्षित प्रतिबंध निवारक शासन का एक तेजी से केंद्र बनता जा रहा साधन बन गए हैं। इनका डिजाइन आतंकवाद, प्रसार, साइबर संचालन और हाइब्रिड खतरे का मुकाबला करने के लिए किया गया है। ये औपचारिक रूप से प्रशासनिक और सतर्कतापूर्ण हैं, दंडात्मक नहीं। फिर भी उनके व्यावहारिक प्रभाव आपराधिक दंड के बराबर या कभी कभी उससे अधिक हो सकते हैं। हुसैन डोगरू, एक जर्मन पत्रकार जिनके बारे में रिपोर्ट है कि वे यूरोपीय संघ के प्रतिबंध शासन के अंतर्गत नामांकन के बाद लंबे समय तक अपने परिवार के लिए भोजन और बुनियादी जरूरतों के लिए पर्याप्त धनराशि तक पहुंचने में असमर्थ रही, यूरोपीय कानूनी व्यवस्था के भीतर एक गहरे तनाव को दर्शाता है। संघ की संवैधानिक प्रतिबद्धता मानवीय गरिमा, आनुपातिकता और प्रभावी न्यायिक संरक्षण के साथ नियामक तंत्र जो गंभीर सामाजिक आर्थिक अलगाव पैदा करने में सक्षम है, से अस्तित्व में है। मामले का इतिहास और नियामक संदर्भ। हुसैन डोगरू, बर्लिन स्थित तुर्की कुर्द मूल के एक पत्रकार, ने अंग्रेजी भाषा के प्लेटफॉर्म रेड डॉट मीडिया की स्थापना की, जो एफा मीडिया से जुड़ा है। यह आउटलेट कथित रूप से उपनिवेशवाद विरोधी और वामपंथी दृष्टिकोणों पर केंद्रित था और फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों तथा गाजा संघर्ष की व्यापक कवरेज प्रदान करता था, अक्सर जर्मन और यू नीति पदों की आलोचना करता था। 20 मई 2025 को यूरोपीय संघ की परिषद ने हुसैन डोगरू और उनके मीडिया आउटलेट को हाइब्रिड खतरे और अस्थिरता से संबंधित प्रतिबंध ढांचे के अंतर्गत नामांकित किया। नामांकन में रूसी रणनीतिक हितों से जुड़ी सूचना हेरफेर गतिविधियों में कथित संलिप्तता का हवाला दिया गया। महत्वपूर्ण रूप से नामांकन आपराधिक के बजाय प्रशासनिक था। प्रतिबंधात्मक उपायों से पहले कोई अभियोग, दोष सिद्धि या प्रतिद्वंद्वी साक्ष्य सुनवाई नहीं हुई। परिणामों में शामिल थे व्यापक संपत्ति फ्रिज, यात्रा प्रतिबंध और दस्तावेज सौंपना, आर्थिक संसाधनों के प्रावधान पर प्रतिबंध, परिवार के सदस्यों की वित्तीय पहुंच पर अप्रत्यक्ष प्रभाव, पुनर्विचार के अनुरोध सितंबर 2025 में अस्वीकृत कर दिए गए, निरस्तीकरण कार्यवाही यूरोपीय संघ की न्यायालय कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन के समक्ष लंबित है। जर्मन अदालतों में घरेलू मुकदमेबाजी तेज हुई जब बैंक सब्सिस्टेंस भत्ती के लिए अधिकृत धनराशि जारी करने से इनकार कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप मार्च 2026 में फ्रैंकफर्ट जिला अदालत द्वारा आपातकालीन राहत अस्वीकृत कर दी गई। 3. ईयू लक्षित प्रतिबंधों की कानूनी प्रकृति, निवारक उपायों के साथ अर्धदंडात्मक प्रभाव। ईयू लक्षित प्रतिबंध एक अस्पष्ट सिद्धांतिक स्थिति में हैं। औपचारिक रूप से वे हैं निवारक प्रशासनिक उपाय, नेटवर्क और प्रभाव संचालन को बाधित करने के उद्देश्य से बाहरी संबंधों और सुरक्षा क्षमताओं से उचित ठहराए गए। व्यावहारिक रूप से, हालांकि, वे उत्पन्न कर सकते हैं दीर्घकालिक वित्तीय बहिष्कार, प्रतिष्ठा कलंक, गतिशीलता और व्यावसायिक गतिविधि पर प्रतिबंध, जीवित रहने के संसाधनों के लिए प्रशासनिक विवेक पर निर्भरता। इस दोहरी प्रकृति को यूरोपीय संघ की न्यायालय के ऐतिहासिक न्यायशास्त्र में मान्यता दी गई है, विशेष रूप से कड़ीवी काउंसिल में, जिसमें पुष्टि की गई कि सुरक्षा प्रेरित प्रतिबंध भी आनुपातिकता और मौलिक अधिकारों अनुपालन की पूर्ण समीक्षा के अधीन रहते हैं। प्रतिबंधों का निवारक चरित्र उनके गहरे हस्तक्षेप की क्षमता को समाप्त नहीं करता। संपत्ति अधिकारों, निजी और पारिवारिक जीवन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्यूनतम निर्वाह गारंटियों के साथ, इसलिए सिद्धांतिक चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि निवारक तर्क संवैधानिक जवाबदेही को ग्रहण न कर ले। 4. ईयू कानून की प्रधानता और राष्ट्रीय अदालतों की भूमिका। फ्रैंकफर्ट अदालत का तर्क कॉस्टा वीएनएल और सिमेंटाल जैसे मामलों से व्युत्पन्न ईयू कानून प्रधानता की प्रतिबंधात्मक व्याख्या को प्रतिबिंबित करता प्रतीत होता है। ये निर्णय वास्तव में स्थापित करते हैं कि राष्ट्रीय कानून सीधे लागू संघ उपायों के सामने छुपना चाहिए। हालांकि, प्रधानता ईयू कानून में ही अंतर्निहित मौलिक अधिकार गारंटियों वाले संवैधानिक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर काम करती है, इसलिए राष्ट्रीय अदालतों पर कई दायित्व हैं। 1. अधिकार अनुरूप व्याख्या। उन्हें प्रतिबंध विनियमों की व्याख्या, जिसमें मानवीय छूट शामिल है, ईयू चार्टर के प्रकाश में करनी चाहिए। 2. कार्यान्वयन उपायों की आनुपातिकता जाँच। बैंकिंग प्रथाएं और प्रशासनिक प्रवर्तन निर्णय समीक्षा योग्य रहते हैं। 3. प्रारंभिक संदर्भ तंत्र। जहां व्याख्या या वैधता अनिश्चित हो, अदालतों को यूरोपीय संघ की न्यायालय से संलग्न होना चाहिए बजाय प्रतिबंधों को आदर्श रूप से निरपेक्ष मानने के। मुख्य मुद्दा इसलिए प्रधानता और गरिमा के बीच द्विआधारी संघर्ष नहीं है, बल्कि ईयू कानून के भीतर व्याख्यात्मक मार्जिन की सीमा है। वी मानवीय छूट और आनुपातिकता परीक्षण। ईयू प्रतिबंध शासनों में आमतौर पर ऐसी छूट होती है जो निम्नलिखित के लिए आवश्यक धनराशि तक पहुंच की अनुमति देती है: भोजन, किराया, चिकित्सा उपचार, कानूनी व्यय। इन सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता को शास्त्रीय ईयू आनुपातिकता ढांचे का उपयोग करके आंका जाना चाहिए। 1. वैध उद्देश्य। हाइब्रिड खतरे और सूचना हेरफेर का मुकाबला करना ईयू बाहरी कार्रवाई का एक मान्यता प्राप्त उद्देश्य है। 2. उपयुक्तता। वित्तीय प्रतिबंध अस्थिर करने वाली गतिविधियों को वित्तपोषित करने की क्षमता को कम करने में यथार्थवादी रूप से सहायक हो सकते हैं। 3. आवश्यकता। एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या सबसिस्टेंस भत्ते अधिकृत होने पर व्यापक बैंकिंग बहिष्कार आवश्यक है? यदि कम प्रतिबंधात्मक विकल्प मौजूद हैं, जैसे निगरानी वाले खाते या पर्यवेक्षित वितरण तंत्र, तो आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती। 4. आनुपातिकता स्ट्रिक्टो सेंसु। जहां प्रवर्तन किसी व्यक्ति और आश्रित बच्चों को दरिद्रता में धकेलने का जोखिम पैदा करता है, सुरक्षा उद्देश्यों और मानवीय गरिमा के बीच संतुलन संवैधानिक रूप से तीव्र हो जाता है। मानवीय छूटों को परिचालन में न लाने की विफलता इसलिए औपचारिक रूप से लक्षित प्रतिबंधों को व्यावहारिक रूप से सामाजिक आर्थिक बहिष्कार के उपकरण में बदल सकती है। Y. जर्मन संवैधानिक गारंटियां और न्यूनतम निर्वाह न्यायशास्त्र। जर्मन बुनियादी कानून में निहित हैं मानवीय गरिमा की अखंडता अनुच्छेद 1GG, सामान्य स्वतंत्रता अनुच्छेद 2GG, संपत्ति संरक्षण अनुच्छेद 14GG, सामाजिक राज्य सिद्धांत अनुच्छेद 20GG। जर्मन संवैधानिक न्यायशास्त्र एक गरिमापूर्ण न्यूनतम अस्तित्व सुनिश्चित करने के राज्य दायित्व को मान्यता देता है। हालांकि प्रतिबंध ईयू कानून से व्युत्पन्न है, राष्ट्रीय प्राधिकरणों और वित्तीय संस्थानों द्वारा उनका कार्यान्वयन इन संवैधानिक मानकों के साथ संगत रहना चाहिए। जहां प्रवर्तन प्रथाएं आवश्यक वस्तुओं की लंबी अवधि की वंचितता का जोखिम पैदा करती हैं, संवैधानिक आनुपातिकता और अप्रत्यक्ष राज्य जिम्मेदारी के प्रश्न उठ सकते हैं। 7. ईयू चार्टर और कन्वेंशन दायित्व। ईयू चार्टर गारंटी देता है गरिमा, पारिवारिक जीवन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति, प्रभावी न्यायिक उपचार। यूरोपीय मानवाधिकार कन्वेंशन के अंतर्गत समानांतर संरक्षण मौजूद हैं, जिनकी यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय द्वारा व्याख्या की जाती है। कन्वेंशन न्यायशास्त्र ने तेजी से सकारात्मक दायित्वों को मान्यता दी है, जिनके तहत राज्य को गंभीर भौतिक वंचितता की स्थितियों को रोकना चाहिए जहां ऐसी स्थितियां राज्य कार्रवाई या नियामक ढांचे से जुड़ी हों। इसलिए मुद्दा केवल यह नहीं है कि प्रतिबंध सिद्धांत रूप में वैध हैं या नहीं, बल्कि उनका व्यावहारिक प्रवर्तन न्यूनतम मानवीय सीमाओं का सम्मान करता है या नहीं। 8. पार्श्व प्रभाव और नागरिक एकजुटता का शीतलन। रोगरू मामले का सबसे विशिष्ट पहलू तीसरे पक्षों द्वारा मानवीय सहायता प्रदान करने का सामना करने वाला कानूनी जोखिम है। जर्मन प्रतिबंध कार्यान्वयन कानून के अंतर्गत सूचीबद्ध व्यक्तियों को भौतिक सहायता प्रदान करना आपराधिक अपराध हो सकता है। यह जोखिम संभावित रूप से फैल सकता है। किराने की खरीदारी, शिशु आपूर्ति, आवास सहायता तक सक्रिय मुकदमों के अभाव में भी नियामक वातावरण अनौपचारिक एकजुटता नेटवर्क पर शीतलन प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। मानवाधिकार दृष्टिकोण से प्रतिबंध इस प्रकार नागरिक समाज के कानूनी जोखिम परिदृश्य को पुनर्गठित कर सकते हैं, जो सूचीबद्ध व्यक्ति से परे निरुत्साहन बढ़ाते हैं। इस घटना को इस प्रकार अवधारणाबद्ध किया जा सकता है: पार्श्व मौलिक अधिकार प्रभाव, जहां निवारक उपाय अप्रत्यक्ष रूप से एकजुटता, संघ और मानवीय कार्रवाई के प्रयोग को बाधित करते हैं। ऐसे प्रभाव आनुपातिकता और लोकतांत्रिक वैधता के जटिल प्रश्न उठाते हैं। 9. अंतरिम संरक्षण और नियम 39 उपायों की संभावना। न्यायालय के नियमों का नियम 39 यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय को अंतरिम उपाय इंगित करने की अनुमति देता है जहां अपूर्णीय हानि का आसन जोखिम हो। हालांकि पारंपरिक रूप से निर्वासन या तत्काल चिकित्सा मामलों में लागू, विकसित न्यायशास्त्र सुझाता है कि राज्य कार्रवाई से जुड़ी गंभीर मानवीय वंचितता भी आवश्यक सीमा तक पहुंच सकती है। हालांकि न्यायालय उच्च स्तर की तात्कालिकता और साक्ष्यात्मक स्पष्टता लागू करता है। सफल आवेदनों के लिए संभावित रूप से आवश्यक होगा वंचितता का विस्तृत दस्तावेजीकरण, अप्रभावी घरेलू उपचारों का प्रमाण, आश्रित बच्चों पर जोखिम का प्रदर्शन, अंतरिम राहत संभावित रूप से राष्ट्रीय प्राधिकरणों को अंतिम फैसले तक अधिकृत सब्सिस्टेंस फंड तक प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता कर सकती है। एक्स मानवीय बाह्यवाद और ईयू मानक शक्ति की आंतरिक विश्वसनीयता। यूरोपीय संघ खुद को वैश्विक स्तर पर अग्रणी मानवीय अभिनेता के रूप में स्थापित करता है, जो अकाल, विस्थापन और सशस्त्र संघर्ष के जवाबों को वित्तपोषित करता है। यह बाहरी मानवीय संलग्नता संघ की मानक शक्ति पहचान का हिस्सा है। फिर भी ईयू क्षेत्र के भीतर प्रतिबंधित व्यक्तियों और उनके परिवारों के लंबे समय तक वित्तीय वंचितता का सामना करने वाले मामलों से असंगति की धारणा उत्पन्न हो सकती है। अनुच्छेद 70 ईयू संघ नीतियों के बीच सुसंगतता की मांग करता है। यदि प्रतिबंध विधान में मानवीय सुरक्षा उपाय मौजूद हैं लेकिन व्यवहार में विफल होते हैं तो प्रश्न उठते हैं। वैध अपेक्षाओं आनुपातिकता मौलिक अधिकार प्रतिबद्धताओं की प्रणालीगत विश्वसनीयता के बारे में। यह विरोधाभास केवल शाब्दिक नहीं है, यह ईयू वैधता की आंतरिक स्थिरता से संबंधित है। एक कानूनी व्यवस्था जो बाहरी रूप से गरिमा पर जोर देती है उसे अपने स्वयं के क्षेत्राधिकार के भीतर मानवीय आपातकाल को रोकने की परिचालन क्षमता प्रदर्शित करनी चाहिए। 11 बैंकिंग अनुपालन अतिप्रवर्तन और संभावित दायित्व। वित्तीय संस्थान प्रतिबंध उल्लंघनों से बचने के लिए मजबूत प्रोत्साहनों के तहत काम करते हैं जिनमें गंभीर नियामक दंड शामिल हो सकते हैं। यह वातावरण अतिअनुपालन को प्रोत्साहित करता है जिसमें अधिकृत लेनदेन को संसाधित करने से पूर्ण इनकार शामिल है। दायित्व का उद्भव निर्भर करता है। प्रशासनिक प्राधिकरण की स्पष्टता राष्ट्रीय सिविल कानून के तहत लापरवाही मानक इनकार और प्रदर्शनीय हानि के बीच कारणता। हालांकि बैंकों की कानूनी जवाबदेही जटिल बनी रहती है, अदालतें तेजी से जांच सकती हैं कि जोखिम परिहार प्रथाएं मानवीय छूटों की प्रभावशीलता को कमजोर तो नहीं करती। 12 न्यायिक सुधार की संभावनाएं। कानूनी राहत के कई रास्ते बाकी हैं। जर्मन अदालतों के भीतर अपीलीय समीक्षा, संघीय संवैधानिक अदालत के समक्ष संवैधानिक शिकायत, यूरोपीय संघ की न्यायालय के समक्ष निरस्तीकरण कार्यवाही, यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय में संभावित आवेदन। यदि उल्लंघन स्थापित होते हैं तो उपचार में शामिल हो सकते हैं। राज्य दायित्व सिद्धांतों के तहत मुआवजा, नामांकन का निरस्तीकरण, अंतरिम मानवीय गारंटियां, अनुच्छेद 41 ECHR के तहत क्षति, न्यायिक स्पष्टीकरण भविष्य के प्रतिबंध डिजाइन को आकार दे सकता है, मानवीय सुरक्षा उपायों के लिए न्यूनतम परिचालन मानक परिभाषित करके। 13 निष्कर्ष सुरक्षा शासन और मानवीय गरिमा की प्रधानता। डोगरू मामला आधुनिक यूरोपीय शासन के भीतर संरचनात्मक तनाव को प्रकाशित करता है। निवारक प्रतिबंध शासन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को गुप्त अस्थिरता से बचाने का प्रयास करते हैं, फिर भी जब कठोरता से या प्रभावी मानवीय शमन के बिना लागू किए जाते हैं तो वे जीवन धमकी देने वाली वंचितता की स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। यूरोपीय अदालतों की चुनौती इसलिए प्रतिबंध नीति को विकृत करना नहीं है बल्कि सिद्धांतिक सीमाएं स्पष्ट करना है जो सुनिश्चित करे कि निवारक सुरक्षा उपाय संवैधानिक मानवतावाद में लंगर डाले रहें। अंततः यूरोपीय कानूनी व्यवस्था की विश्वसनीयता इसकी क्षमता पर निर्भर करती है कि वह रणनीतिक लचीलापन को मानवीय गरिमा की नींव की प्रतिज्ञा के साथ सामंजस्य बिठा सके जो भू राजनीतिक संघर्ष के समय में भी सशर्त नहीं है। बैलेंस स्केल इमोजी स्पार्कल्स इमोजी।